प्यारे दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का प्यार भरा बहुत बहुत नमस्कार। आज 25 जुलाई है मित्रों, वर्ष 2014, और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन दोस्तों का भी जिन्होंने कल एकेडमी के अक्टूबर में होने वाली क्लासेस में दाखिला लिया है। ये मित्र हैं अमरजीत नागर दिल्ली से, वैभव कुमार भगवती प्रसाद दवे अहमदाबाद से, और मोहम्मद अजमल खान लखनऊ से। तो अमरजीत, वैभव और मोहम्मद अजमल खान, आप तीनों का मैं एकेडमी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसा कि मैं सभी से एक एकेडमी के बिहाफ पर वायदा करता हूं, निश्चित रूप से आप तीनों से भी मैं वह वायदा दोहराना चाहूंगा कि आप एकेडमी में एक विश्वास लेकर आ रहे हैं, आंखों में एक सपना लेकर के आ रहे हैं, अपनी कुछ कमजोरियों का निराकरण की बात सोचकर आ रहे हैं, कुछ लर्न करने के लिए आ रहे हैं, अपने को इम्प्रूव करने के लिए आ रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि एकेडमी की हमारी पूरी टीम इसमें कोई कोर कसर नहीं उठा रखेगी। हां, ये जरूर है कि आप कितना हासिल कर पाते हैं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितना सहयोग कर पा रहे हैं। मित्रों, मैं बार बार ये बात दोहराता रहा हूं, कहता रहा हूं कि देने वाला इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेने वाला इम्पॉर्टेंट होता है। अभी पूरे देश में बरसात हो रही है, बरसात का पानी सभी के ऊपर बराबर बरस रहा है, बराबर समान रूप से बरस रहा है। वह करेले पर भी बरस रहा है, केले पर भी बरस रहा है, गन्ने पर भी बरस रहा है। गन्ने में यही पानी जाकर के मीठा हो जाता है, और करेले और नीम में यही पानी जाकर कड़वा हो जाता है। दोस्तों, पानी तो वही है, लेकिन जो करेले और नीम का मैकेनिज्म है और जो गन्ने का मैकेनिज्म है, वो उस पानी को मीठे या कड़वे में तब्दील करता है। तो मित्रों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होगा वो डेफिनेटली आपका होगा, और उस रोल की शुरुआत के रूप में मैं एक बार फिर से अपने सभी एडमिशन लेने वाले दोस्तों से कहना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज आप इस डेली ऑडियो गाइडेंस को सुनना बिल्कुल भी बंद न करें। कम से कम जिन्होंने दाखिला लिया है उनके लिए तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वह इसे कंटिन्यू बनाए रखें। और सच ये है कि चूंकि उन्होंने इस एकेडमी में एडमिशन लिया है, और एडमिशन लेने के नाते मुझे कुछ एक विशेष अधिकार भी दिया है अपने प्रति, तो उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भी दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि प्लीज इस ऑडियो गाइडेंस को बिल्कुल भी मिस न करें। यदि कभी मिस हो भी जाता है तो नेक्स्ट डे उसको सुनकर उसकी भरपाई करें, और नॉलेज सेंटर में जो भी अखबारों की क्लिपिंग्स डाली जाती हैं उनको भी पढ़ना है आपको। आप देखते हैं कि आकाशवाणी समाचार के बाद अखबारों के समाचार का रिव्यू होता है, और वो रिव्यू इसी पर बेस्ड होता है जिसकी क्लिपिंग्स नॉलेज सेंटर में डाली जाती है। तो उस क्लिपिंग्स को आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे ध्यान देंगे, उसका कोर एरिया क्या है, उसका सार क्या है, वो सब मैं अपने रिव्यू में बोलता हूं। तो आपको चाहिए कि इस ऑडियो गाइडेंस को सुनने के बाद आप वो क्लिपिंग्स पढ़ें, न कि पहले। दोस्तों, एक छोटी सी घटना जो कल रात की है, मैं आप लोगों से एक मोटिवेशनल फॉर्म के रूप में चर्चा करना चाहूंगा। रात के लगभग मैं समझता हूं कि 12:15 बज गए थे। हमारा बेटा जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर सोता है, वहीं उसकी सब व्यवस्था है, हम लोग नीचे सोते हैं। 12:15 बजे के आसपास वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरा, और उसने आवाज दी, पापा पापा, मम्मी मम्मी। हम लोगों ने कहा क्या हुआ सानिध्य, तो उसने बताया कि किस तरीके से वो जो कॉफी है, जो हमारे यहाँ डॉगी है उसका नाम कॉफी है, वो हमारे बेटे के पास ही वो सोती है, तो वो बहुत बेचैन है। और मैंने दरवाजा जैसे ही वो ऊपर से खोला, वो एकदम नीचे की ओर भाग करके आई है, और जब मैं नीचे का मेन गेट मैंने खोल दिया है तो वो भाग करके पार्क में चली गई है। पता नहीं उसको क्या हुआ है, वो बड़ी तेज तेज सांस ले रही थी, वो वॉमिटिंग जैसी भी करना चाह रही थी, पता नहीं क्या हो गया उसे। हम लोग भी घबराए, मैं और मेरा बेटा रात के 12 बज चुके थे, बिल्कुल हमारे घर के सामने ही एक काफी बड़ा पार्क है, हम लोग वहां गए तो हम लोगों ने देखा कि जो कॉफी जो प्यारी सी डॉगी है वो बड़ी बेचैन होकर के घास के बीच में इधर उधर मुंह मार रही थी। मैं और मेरा बेटा उसको ऑब्जर्व करने लगे और थोड़ी देर में हमने देखा कि वो घास में से ही कुछ कुछ चीजें छांट करके खा रही है। बहुत ध्यान से देखने पर हमें पता लगा कि वो घास खा रही है। लेकिन मजेदार बात ये थी दोस्तों कि उस पूरे पार्क में बहुत सी घास है, लेकिन वो सारे घास को नहीं खा रही थी, वो घास के भीड़ में जो इतनी सारी घास उगी हुई है उसमें से कोई पर्टिकुलर घास को ढूंढ ढूंढ करके खा रही थी। उसने वो घास ढूंढी, थोड़ी देर तक वो घास खाती रही, कहीं कहीं मिलती थी कहीं कहीं नहीं मिलती थी, वो बड़ी बेचैनी से पूरे पार्क में घूमती रही। और जब लगभग 10-15 मिनट तक घूमने के बाद शायद जब उसको तसल्ली हो गई और उसकी जरूरत पूरी हो गई तो वो हम लोगों के पास आई और बड़े प्रेम से हम लोगों के पीछे पीछे आते हुए घर में फिर से दाखिल हो गई। तो मित्रों ये घटना जैसे ही मैंने देखी, मुझे परसों सुधीर कुमार जो दिल्ली के हैं उन्होंने एक पोयम भेजी थी, खुद की लिखी हुई पोयम भेजी थी, वो बिल्कुल याद आ गई कि ओ माई मास्टर यू आर माई शेफर्ड आई एम योर शीप। और इसके बाद उन्होंने लिखा था कि धरती पर घास के मैदान फैले हुए हैं लेकिन आपके द्वारा मुझे पता लगा कि व्हाट टू ग्रेज एंड व्हाट टू लीव, मुझे पता लगा कि इस घास के बीच में से मैं क्या खाऊं और किस घास को छोड़ दूं। दोस्तों ये हमारी कॉफी जानती है अपने हिसाब से। फ्रेंड्स इस घटना के माध्यम से मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आपके चारों तरफ इन्फॉर्मेशन का अंबार है। आप जब सब्जेक्ट की किताब खरीदेंगे, जनरल नॉलेज की किताब खरीदेंगे तो आप अगर उनको टोटल जोड़ देंगे तो पता लगा कि हजारों पेज बन गए हैं। जब आप मैगजीन लेते हैं, कोई भी मैगजीन आप उठा करके देखिए तो 100-150 पेज की वो मैगजीन होती है। आप अखबार पढ़ते हैं, एक अखबार 18-20 पेज का होता है और अगर आप तीन अखबार पढ़ते हैं जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए तो कुल मिलाकर 50-60 पेज हो जाते हैं। और दुनिया भर की चीजें आप न्यूज भी सुनते हैं, टीवी चैनल्स पर भी न्यूज सुनते होंगे, डिस्कशंस देखते होंगे, चारों तरफ बम्बार्डिंग हो रही है, बम्बार्डिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड इमेजेस, चारों तरफ से ऐसा हो रहा है। कुछ घटनाएं भी आप अपने सामने देख रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वहां भी चीजें दिखाई देती हैं, तो ये सारा घास का मैदान है। लेकिन याद रखिए कि इसमें एक भी चीज बेकार नहीं है। याद रखिए कि अगर बेकार की चीज होती तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। सारी चीजें उपयोगी हैं, याद रखिए, इसको बिल्कुल मत भूलिए। इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जानना है कि इन सारी चीजों में हमारे लिए कौन सी उपयोगी, बस दैट्स ऑल, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। इसमें से कोई चीज बेकार नहीं है, कोई सूचना बेकार नहीं है, कोई इमेज बेकार नहीं है, कोई भी इवेंट बेकार नहीं है, लेकिन डिपेंड सब कुछ इस बात पर करता है कि आपके लिए कौन सी चीज जरूरी है और जिसमें यह क्षमता होती है कि समझ सके कि मेरे लिए कौन सी चीज जरूरी है। दोस्तों वही बाजी मार ले जाता है। मैं समझता हूं कि जिसे आप होशियारी कहते हैं वो होशियारी क्या है, कुछ नहीं। होशियारी केवल ये जानने का नाम है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। याद रखिए, जो होशियारी इस बात का नाम नहीं है कि मुझे इस चीज की जरूरत है। देखिए हमारे पास इच्छाओं की भरमार, एक लंबी लिस्ट हम सबके सामने, अपने अपने डिजायर्स की, हम सबके सामने कामों की एक बड़ी लिस्ट है, ढेर सारे काम करने हैं, मेरी ढेर सारी इच्छाएं हैं। लेकिन क्या हम सभी काम कर सकते हैं? कोई कर सका है आज तक? क्या कोई अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सका है? नेवर, नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। तो इन इच्छाओं में से हम किन किन को काट के बाहर करें, इस लिस्ट में से किस किस के सामने क्रॉस लगाएं कि मुझे ये काम नहीं करना है, ये जानना सही मायने में होशियारी है। और दोस्तों मुझे क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या नहीं देखना है, क्या क्या नहीं सुनना है, ये जानना सही मायने में सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी का बिल्कुल प्रारंभिक चरण है। दोस्तों जैसे मैंने वो कॉफी को घास देखते हुए देखा, मैं देख रहा था कि वो इतने बड़े बड़े घास के बीच में, घासों के झुंड के बीच में किस तरह से एक छोटे से तिनके जैसे घास को बड़े इत्मीनान से अलग करती थी और खा लेती थी।
आप देख रहे हैं कि वो तक इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, या मैं कहूं कि वो इतनी होशियार है कि इतनी सारी जो खूबसूरत और हरी हरी घासें हैं सारे मेरे काम की नहीं है, भले चाहे वो कितनी भी खूबसूरत और नर्म क्यों न हो, मुझे तो अपने काम की चीज चाहिए। दोस्तों एक बार फिर से मैं कहूंगा कि ऑडियो गाइडेंस में मेरी कोशिश सिर्फ यही है कि मैं आपके अंदर वो दृष्टि पैदा कर सकूं, वो अंतर्दृष्टि पैदा कर सकूं कि आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकें। केवल ये नहीं कि उस टॉपिक को आइडेंटिफाई कर सकें, बल्कि उस टॉपिक में भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकें, जिसे अभी अभी मैंने अंतर्दृष्टि का नाम दिया है। तो मित्रों शुरुआत के रूप में आज इतनी ही बात। अब मैं आता हूं कल के आकाशवाणी के समाचार पर। कल के आकाशवाणी के समाचार में एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो खबर है कैबिनेट ने बीमा सेक्टर में 49% एफडीआई की अनुमति दे दी है। मैं इसको थोड़ा सा आपको इसकी एनालिसिस करना चाहूंगा दोस्तों, ताकि आप समझ सकें और ये जान सकें कि वास्तव में बेसिक कहां किसको जाता है। मुझे मालूम है कि इससे पहले कुछ फ्रेंड्स ने ये मेल किया था कि सर बेसिक क्या होता है, उस समय मैंने कुछ बातें बताने की कोशिश की थी, लेकिन समय समय पर इसको मैं दोहराता रहूंगा। और दोस्तों चूंकि बात बेसिक की आई है तो मैं आपको अभी से याद दिला दूं, हो सकता है मैं बाद में मिस कर जाऊं, कि इस बार के जो संडे का जो ऑडियो गाइडेंस होगा वो इस बेसिक्स पर ही होगा। पूरा आधे घंटे का ऑडियो गाइडेंस सिर्फ कि बेसिक को कैसे समझें, क्या होती है बेसिक, कैसे समझें सिविल सर्विस में उसका क्या रोल है, मैं प्रमाण सहित इस बात को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और मैं समझता हूं कि एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब देखिए कि बीमा कंपनी से रिलेटेड जो कल की न्यूज थी उसको आप कैसे समझेंगे। पहली बात आप ये समझिए कि इसको केवल कैबिनेट ने मंजूरी दी है, सरकार ने मंजूरी नहीं, सरकार मतलब इसको यूं कह लीजिए कि अभी जनता ने इसको मंजूरी नहीं दी है। चलिए हम डेमोक्रेटिक सिस्टम की लैंग्वेज में बात करें, जो कैबिनेट है वो सरकार है, नो डाउट। तो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसका मतलब है कि जो अभी सरकार है सत्ता में उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम इंश्योरेंस सेक्टर में 49% एफडीआई की परमिशन देते हैं, राइट। अब आगे क्या होना है, क्या ये बात ये नियम लागू हो जाएगा? नहीं, हम डेमोक्रेसी में हैं, सरकार ने तो मंजूरी दे दी है लेकिन संसद ने मंजूरी नहीं दी है, और संसद की मंजूरी देने का ही मतलब होता है जनता की मंजूरी। तो अब ये जो कैबिनेट की मंजूरी है ये अब संसद में जाएगा, संसद मतलब लोकसभा में, राज्यसभा में, जब इन दोनों सदन ये दोनों सदन पारित कर देंगे तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे, फिर ये कानून बन जाएगा और अनुमति मिल जाएगी। तो मित्रों ये कैबिनेट और संसद के इस अंतर को समझिएगा। बट नेचुरल है कि सरकार जो भी निर्णय लेगी देखिए वो कैबिनेट में ही सबसे पहले लेगी, क्योंकि जो कैबिनेट है बेसिकली वो जो हमारा मंत्रिमंडल है वो एक तरह से ग्रुप है जो सरकार ये सब मिलकर के सरकार बनाते हैं। नो डाउट कि उसके जो हेड होते हैं, उसके जो पायलट हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ये बात अलग है कि जो प्रधानमंत्री कहेंगे वो होगा या जो अपने मिनिस्टर कहेगा वो होगा, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी मिलने का अर्थ होता है कि एक तरह से सामूहिक तरीके से उसे सरकार ने एक्सेप्ट किया, उस पर बातचीत हुई, डिस्कशंस हुए, और डिस्कशंस होने के बाद यह लगा कि ऐसा किया जाना चाहिए, राइट। तो ये बहुत दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज कैबिनेट एंड व्हाट इज पब्लिक पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। अब आप देखिए कि इसमें दूसरा पॉइंट है कि 49%, ये 49% क्या है, 50% क्यों नहीं, 51% क्यों नहीं, 50% कर देते तो सबसे आसान होता, आधा आधा हो जाता, ये 49 क्यों है? दोस्तों ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए। जो कोई भी जब कंपनी बनती है, राइट, अगर वो पब्लिक कंपनी है मतलब सार्वजनिक है या पब्लिक है, पब्लिक होने का मतलब है कि जिसके शेयर्स मार्केट में दिए गए, एक तो हो सकता है कि मेरी अपनी ही इंडस्ट्री हो, मैंने पूंजी लगाई है, मेरा अपना उद्योग है और मैं सामान उसमें से उत्पादित कर रहा हूं और बेच रहा हूं, ये मेरी बिल्कुल पर्सनल कंपनी हो गई। लेकिन पब्लिक कंपनी तब बन जाती है अगर मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स बेचे हैं। शेयर्स का मतलब है कि दूसरे लोगों को भी मैंने अपनी कंपनी में भागीदार बना लिया है, राइट। तो ये जो इस तरह की जो कंपनी होती है इसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो पूरी की पूरी कंपनी के बारे में निर्णय लेता है और पूरे के पूरे उद्योग का संचालन करता है, उस उद्योग का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो मालिक है वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ ही साथ शेयर्स होल्डर्स के भी प्रतिनिधि होते हैं। उसके नियम होते हैं कि जिसके पास इतने परसेंट शेयर होंगे उसका एक प्रतिनिधि उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होगा। अब आप देखिए कि जो मालिकाना हक है, जो निर्णय लेने का जो अधिकार है, वो किसको होगा? डिस्कशन, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो डिस्कशन कर रहा है। मान लीजिए कि किसी मुद्दे पर बहस हो गई और कोई फाइनल निर्णय नहीं हो पा रहा है, लेकिन निर्णय तो लेना है, तो किसका प्रिवेल करेगा? तो जो मालिकाना हक है वो उसका होता है जिसके पास 51% शेयर होता है। फिर 49% चाहे जितना भी विरोध करे उसकी बात नहीं चलेगी। 51% सरकार किसकी बनती है? आधे से अधिक जिसके दल के लोग जीत करके आ जाते हैं। 51% आधे से अधिक, उसको एग्जैक्ट हम 51% नहीं माने, तो उसी पैटर्न पर कहीं ना कहीं ये कंपनी भी काम करती है। तो 49% मतलब आप विदेशी धन 49% का लेकर के आ सकते हैं। हो सकता है कि एक ही विदेश का आदमी 49% आपको धन दे दे, लेकिन कंपनी पर जो अधिकार होगा वो भारतीय का ही रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि विदेश में का जिस विदेश के जिस व्यक्ति ने धन लगाया है वो अपने ढंग से मोल्ड कर लेगा कंपनी को। तो जो अधिकार होगा कंपनी पर, इसका मतलब है कि वो भारतीयों का ही होगा। जो कंपनी का प्रबंधन है वो भारतीय प्रमोटरों के हाथ में रहेगा, इसीलिए 49% की बात है। डिफेंस में भी आप देखते हैं कि जब बात आती है तो वो 49% की ही बात आती है। तो दोस्तों, ये दो चीजें मुझे आज डिटेल में आपको क्लियर करनी थी। एक मैंने आपको बताया कि कैबिनेट वर्सेस पार्लियामेंट, दूसरा मैंने आपको बताया कि व्हाट इज 49% एंड 51%। इससे रिलेटेड जो न्यूज आइटम है, दो न्यूज आइटम मैं अपने नॉलेज सेंटर पे डाल रहा हूं फ्रेंड्स। एक दैनिक भास्कर का है, हिंदी में है, और एक इंश्योरेंस सॉरी एक टाइम्स ऑफ इंडिया का है, हाइक इन एफडीआई विल बूस्ट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इसमें दिया हुआ है कि कैसे धीरे धीरे, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि 50,000 करोड़ रुपए का इसके जरिए विदेशी निवेश होगा। दैनिक भास्कर ने लिखा कि 25,000 करोड़ रुपए का फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो कंट्री में आएगा। तो बट नेचुरल है कि जब इंश्योरेंस सेक्टर बहुत बढ़ेगा तो उसकी वजह से फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस कराएंगे। इंश्योरेंस का अपना एक अलग फायदा होता है, उसकी अपनी एक सामाजिक भूमिका होती है, उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा। जो बेसिक क्लासेज जो होती है उसमें हम इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। तो ये दो आर्टिकल आपको इस बारे में बहुत क्लियर कर देंगे, और आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि भारत में अभी भी 1% लोगों की भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, 1% इवन। और अगर हम वैसे देखें दोस्तों तो लगभग 3% लोग इनकम टैक्स देते हैं। अगर सारे इनकम टैक्स देने वाले भी अपना इंश्योरेंस करा करके रखते तब भी 3% होता, लेकिन इवन शायद 0.86% या कुछ इतने ही लोगों का इंश्योरेंस है। तो मतलब कितना बड़ा बाजार अभी भारत में इंश्योरेंस का खाली पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली इतने बड़े बाजार को देख करके विदेशी जो है इसमें पूंजी लगाएंगे, और ये नो डाउट कि बहुत फायदे वाला क्षेत्र है, और जो बिजनेसमैन जो इसमें पैसा लगाते हैं उनको काफी बड़ा लाभ इसमें मिल सकता है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक जो दूसरी खबर थी वो सेबी अधिनियम को आपने न्यूज में सुना होगा कि जो हमारा सिक्योरिटी जो एक्सचेंज जो बोर्ड है, जो नियामक है, खासकर शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है सेबी, उसका एक अधिनियम लाया गया है जो पेश किया जाएगा, और उसमें सेबी को अधिकार दिए गए हैं। पहले अध्यादेश लाया गया था, लेकिन अब उसको मालूम है आपको कि अध्यादेश की अवधि केवल 6 महीने होती है, जिसके बाद या तो खुद खत्म हो जाएगा नहीं तो पार्लियामेंट में आपको लाना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। तो सेबी अधिनियम में जो लाया गया है, जो अभी लाया जा रहा है, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केवल एक पॉइंट आपको सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि ये बेसिकली जो फर्जी जो चिटपट फंड होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, बस इसको दिमाग में रखिए। आपने देखा कि सहारा इंडिया का कितना बड़ा फर्जी अभी आपको सुनने को मिल रहा है, आपने शारदा चिटपट फंड वेस्ट बंगाल का इससे पहले सुना है वो सुनने को मिल रहा है, कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र की अभी टीवी चैनल पर आ रहा था, अखबारों में तो ज्यादा नहीं आया है, रेडियो न्यूज में भी नहीं है, वहां एक इसी तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए अब सेबी को ही अधिकार दिए जा रहे हैं। मतलब जो भी कंपनी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का धन जमा करेगी उसकी सुनवाई सेबी खुद करेगा और उनको दंड भी खुद दे सकेगा। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि उनको एक तरह से जुडिशियल पावर भी दिए जा रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है दोस्तों कि अगर किसी ने फर्जीवाड़ा किया तो कोर्ट में केस चल रहा है, वो कर रहा है, तो सेबी का उस पर उतना सीधे सीधे अधिकार नहीं रह जाता। अब अधिनियम के जरिए इसको सेबी को शक्तिशाली बनाने की बात है, जो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा कदम है। बीमा और सेबी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि पिछले साल के सिविल सर्विस के अगर आप मेंस के पेपर देखेंगे तो इन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वहीं से हम अपने फ्यूचर के लिए डायरेक्शंस लेते हैं कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। इसी से रिलेटेड दोस्तों एक आर्टिकल आया है इकोनॉमिक टाइम्स में, व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम माल्या राय एंड शाह। तीन लोग नाम दिए हैं, विजय माल्या आप जानते हैं, विजय माल्या, राय जो सहारा के हैं सुब्रतो राय, और शाह जिग्नेश शाह। ये तीन लोग अभी इस तरह के फर्जीवाड़े में किसी न किसी मामले के फर्जीवाड़े में फंसे हुए, आर्थिक उसमें अपराधों में, जिसमें मिस्टर राय तो आप जानते हैं कि अभी तिहाड़ जेल में ही बंद है। तो इनसे आप क्या सीख सकते हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने कुछ जो परिवर्तन आया भारतीय समाज में और अर्थव्यवस्था में और सोच में, उसके बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। मैंने इसको अंडरलाइन किया है और राइट भी किया। इसमें इन्होंने इम्पोर्टेंटली पांच पॉइंट दिए हैं। पहला तो ये दिया कि 1980 में जो आप फर्जीवाड़े कर लेते थे, अब वो स्थिति नहीं रह गई, आप सीख लीजिए कि अब स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। अब जो है ना एक सिस्टम ऐसा हो गया है कि आप उसको एकदम अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते। दोज डेज हैव गॉन, वो दिन खत्म हो गए हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि अब जो स्क्रूटनी होती है सरकार की तरफ से, जो निगरानी होती है और जांच पड़ताल है, वो बढ़ चुकी है, अब ध्यान रखिए। फिर उन्होंने दिया है कि चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन अब जो जमाना है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन का हो गया है, ट्विटर का जमाना है, और ये आपको एक तरह से वो करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए सफिशियंट है। वो दिन गया कि आपका सब चीज पर कंट्रोल है और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर उन्होंने एक चीज और भी दिया हुआ है कि आज के जो हमारे हीरो हैं वो बदल रहे हैं। अब कौन हीरो हो रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं वो अब हीरो हो रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि जो बहुत ज्यादा जो किसी भी तरह से जो पैसा कमा लिया वो हीरो है, जैसे इन्होंने नाम दिया है राकेश कपूर, सत्या नडेला, जो बड़ी बड़ी कंपनी के हीरो हैं। और इसके बाद उन्होंने फिर ये दिया हुआ है कि आप पूछ, अब समझ लीजिए कि वो दिन चले गए कि अगर आप जेल के अंदर चले गए ना तो आपको कोई बचाने वाला अब नहीं है, कोई आप पर ध्यान नहीं देगा। तो ये पांच चीजें सीख लीजिए। तो मैं समझता हूं कि एसए के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे पूरे के पूरे देश में एक बदलाव आ रहा है, और इस बदलाव में आप देखिए कि किस तरह से राइट टू इन्फॉर्मेशन और ट्विटर जो सोशल साइट्स हैं उनकी भूमिका आपको दिखाई दे रही है। दोस्तों एक छोटी सी खबर थी, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने के बारे में जो सरकार है उसने राजनीतिक दलों से व्यू मांगे हैं, उसके ऊपर दैनिक जागरण का एक एडिटोरियल कमेंट है, वो मैं डाल रहा हूं। लेकिन ये मैं सिर्फ आपको एक नजर, एक दृष्टि से डाल रहा हूं, वो ये कि आप इसको देखिएगा कि कैसे एक बेकार एडिटोरियल भी लिखा जा सकता है। मैं उस रूप में बेकार नहीं कह रहा, मैं सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। एडिटोरियल आपको ध्यान में रख करके नहीं लिखा जाता कि सिविल सर्विस के स्टूडेंट पढ़ेंगे। सामान्य पब्लिक के लिए ठीक है, सामान्य पब्लिक को समझ में आ जाएगा कि ठीक है ये क्या है, लेकिन सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरी इस वर्ड्स को लीजिएगा कि कैसे एक बहुत ही सामान्य सा एडिटोरियल होता है। तो ऐसे एडिटोरियल के साथ आपको ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, आपको ज्यादा समय बिताना नहीं है, कंटेंट नहीं मिलेंगे, एनालिटिकल पावर के लिए कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, सोचने के लिए कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन हम लगातार उस पर निगाह रखते हैं और पढ़ते ही हैं क्योंकि इससे हमारी ब्रशिंग होती है। तो दोस्तों इसके बाद एक जो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण आप देख रहे हैं कि पिछले छह सात दिनों से, कुछ दिनों से एक जो घटना हो रही है, इसको केवल आप ध्यान दीजिए कि अभी कल सानिया जो मिर्जा को, जो हमारे यहां की बड़ी रिनाउंड टेनिस प्लेयर हैं, जिनको तेलंगाना ने अभी अपने यहां का एक एम्बेसडर नियुक्त किया था, एक तरह से आईकॉन बना करके, उसको लेकर के विवाद हो गया कि साहब तो पाकिस्तान की बहू है, उनको क्यों बनाया गया। महाराष्ट्र सदन की घटना आप एक दिन पहले देखा है कि किस तरह से एक जो जिनका रमजान का व्रत था उसमें मुंह में रोटी ठूस दी गई। इससे भी पहले स्वरूपानंद जी ने, जो साई बाबा हैं वो भगवान नहीं है, तो इस तरह के जो विवाद हो रहे हैं, बस आप केवल इन विवादों पर ध्यान रखिए कि ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं किस तरह का इंडिकेशन कर रही हैं, क्या राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ रही हैं या हिंदुत्ववादी भावनाएं बढ़ रही हैं, या अल्पसंख्यकों के विरोध में कुछ हो रहा है, या अल्पसंख्यकों के फेवर में हो रहा है, या हिंदुओं के फेवर में हो रहा है, या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह की चेतना विकसित हो रही समाज में, या किधर मोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इन सारी चीजों पर बस आप इस दृष्टिकोण से निगाह रखते रहिए, मतलब फाइनल डिसीजन कुछ मत लीजिए, एक दो घटना से किसी भी चीज के बारे में फाइनल डिसीजन नहीं लिए जाने चाहिए। जैसे आप देखिए कि सानिया के बारे में सीधे सीधे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि हमारे यहां का स्टैंड नहीं है, सानिया जो है हमारे देश की प्राइड है, उन पर हमें गर्व है। एक व्यक्ति का निजी विचार हो सकता है। तो आप केवल इन चीजों को देखते रहिए, चीजें आपके सामने आती चली जाएंगी। तो दोस्तों तब मैं आता हूं आज के अखबारों पर। दैनिक जागरण में एक आर्टिकल है, खासकर जो इसराइल और फिलिस्तीनी को लेकर के जो भी मामला चल रहा है, इसके बारे में हम लोग काफी बात कर चुके हैं। ये हिंदी में है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है, समय की कमी को देखते हुए मैं उसे दोहरा नहीं रहा हूं। आप देख लीजिएगा वही बात जो पहले हम कह चुके हैं कि 1990 के बाद से भारत और इसराइल के संबंध बनने शुरू हुए, खासकर डिफेंस और एग्रीकल्चर फील्ड में हमारा वो बहुत अच्छा मित्र है। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था उस समय भी, और कारगिल युद्ध में भी इसराइल ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया था, इसीलिए हमारे लिए इसराइल को नाराज करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत अपनी किस तरह की विदेश नीति को लेकर के चले, इन दोनों के संघर्ष के दौर में, इस पर एक एडिटोरियल, इस पर एक आर्टिकल है, आप देख लेंगे। दोस्तों एक बिजनेस स्टैंडर्ड में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, कामकाजी महिलाओं के सामने दोहरी है चुनौती। कुछ दिनों पहले, दो दिन पहले मैंने इंदिरा नूई जी का एक स्टेटमेंट, आपको ध्यान होगा कि मैंने कहा था कि किस तरह से हमारी चेतना काम करते, संस्कार काम करती। उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात का अपराध बोध है कि मैं घर को सही समय नहीं दे पा रही या नहीं संभाल पा रही। तो महिलाओं की स्थिति भारतीय समाज में क्या है, और खासकर कामकाजी महिलाओं की जो सर्विस में, भले ही वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर क्यों ना, इंदिरा नूई तो पेप्सिको की आप सोच करके देखिए कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, तो उनकी क्या स्थिति रही है उनको लेकर के। और फिर फेसबुक की जो सीईओ हैं शेरिल सैंडबर्ग, वो इसको किस तरीके से देखती हैं। इसमें कुछ अच्छी सी स्टडी भी दी है, मतलब एक शोध हुआ है, उस शोध में यह है कि जो बाल बच्चों वाली महिलाएं होती हैं उन्हें अविवाहित महिलाओं की तुलना में 14% कम सैलरी मिलती है। अमेरिका तक में महिलाओं के साथ कारपोरेट जगत में भेदभाव किया जाता है। इंदिरा नूई जी की एक दो घटना दी हुई है कि जब वो अपने घर लौटी, उन्होंने पेप्सिको की अध्यक्ष हो गई थी, ये सूचना जब उन्होंने अपनी मां को दी तो मां ने क्या कहा कि घर में तुम्हारी ये जिम्मेदारियां हैं, इसलिए अपने दफ्तर के स्टाज को अपने गैराज में ही छोड़कर आया करो। मतलब इंदिरा जी क्या सोचकर आई होंगी कि अपनी मां को बताऊंगी और इतनी बड़ी उपलब्धि पर मां मेरी बिल्कुल खुशी से चिल्ला उठेंगी और मुझे अपने सीने छाती से लगा लेंगी, उसके बदले में उनको ये सुनने को मिला कि ये तुम अपने दफ्तर में, अपने गैराज में छोड़ करके आया करो, और घर में जो है ना ये तुम्हारा एक पत्नी, एक बेटी और एक बहू और एक मां के रूप में कदम रखा करो। तो इनफैक्ट स्थिति क्या है उसके ऊपर एक अच्छा आर्टिकल है, आपको सोचने को कुछ मिलेगा। और चूंकि हम महिला समानता की बात करते हैं, संविधान में भी समानता की बात की गई है, देख रहे हैं कि भ्रूण हत्या की जो संकट चल रहे हैं, तो इस तरह की ढेर सारे इश्यूज से ये घटना, इस आर्टिकल को आप जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों जनसत्ता का एक एडिटोरियल कमेंट है, विधायिका का दामन, वो इस बात को लेकर के है कि संसद में और विधानसभाओं में लगातार प्रतिशत जो अपराधियों की है वो बढ़ती चली जा रही है, अपराधियों की मतलब जिनके ऊपर मामले चल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बारे में क्या क्या कदम उठाया है, जिससे कि स्थिति कहां तक पहुंची है, उसको लेकर के एक एडिटोरियल कमेंट है, इसको आप लोग देख लेंगे। दोस्तों एक हरी भूमि में एक अच्छा आर्टिकल, इसको मैं अच्छा आर्टिकल कहूंगा, प्रमोद भार्गव का, जैव तकनीक को लेकर के, जीएम फसलों को लेकर के, जीएम टेक्नोलॉजी को लेकर के, ये एक अच्छा आर्टिकल है, तो प्लीज इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। और जीएम फसलों को लेकर के इससे पहले हम लोगों ने एक डिटेल में बात भी की है कि इसके बिल्कुल दो पक्ष हो गए हैं, एक पक्ष इसका समर्थन कर रहा है देश की खाद्यान्न जरूरतों को देखते हुए, और दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है, वो ये मान करके चलता है कि इससे स्वास्थ्य के संकट पैदा होंगे, इससे जमीन की उर्वरक क्षमता कम होगी, इससे विषाणु कीटाणु ये सब ज्यादा से ज्यादा फैलेंगे, इससे किसानों का शोषण भी होगा क्योंकि हर बार उनको बीज खरीदना पड़ेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दो पक्ष बन गए हैं, इससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। अभी अभी सरकार ने कुछ जीएम फसलों के लिए परीक्षण खेती की अनुमति दे दी है, इसलिए ये विवाद अभी, ये डिस्कशन खड़ा हुआ है, इसको आप पढ़िएगा। और ये मैं तो बल्कि सलाह दूंगा कि इस आर्टिकल को आप अपने पास परमानेंट रख भी लेंगे, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और रखिएगा, एक अच्छा आर्टिकल है ये। दोस्तों इसके बाद अंतिम आज का जो एडिटोरियल कमेंट है वो इकोनॉमिक्स टाइम्स का है, वो खासकर लेबर रिफॉर्म को लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे यहां जो श्रम कानून है उनमें सुधार की बात कही जा रही है। तो इसमें इन्होंने तीन सुधार की बात कही है जिस पर सरकार सोच रही है। पहला है कि जो मिनिमम वेजेज हैं
उस पर सुधार की बात चल रही है, न्यूनतम मजदूरी क्या होनी चाहिए। दूसरा है अप्रेंटिसशिप, जब आप ट्रेनिंग पर होते हैं उस दौरान के क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। और तीसरा है चाइल्ड लेबर, बाल श्रम। इन तीनों क्षेत्रों में सुधार की बात कही जा रही है और इसमें उन्होंने कहा है कि अगर इनमें सुधार लाया गया तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल दिया कि भारत में केवल 3 लाख लोग ही फॉर्मल अप्रेंटिसशिप में हैं, फॉर्मल सेक्टर में, मतलब औपचारिक असंगठित क्षेत्र में, जबकि जर्मनी जैसे देशों में 60 लाख लोग इस क्षेत्र में हैं। लगातार भारत, अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो नए प्रधानमंत्री आए हैं वो भी स्किल की बात कर रहे हैं कि हमें कार्यकुशल लोग चाहिए, दक्ष लोग चाहिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। तो उस दृष्टि से भी इस तरह के लॉ के परिवर्तन की इस एडिटोरियल कमेंट में सिफारिश की गई है, मतलब एक तरह से प्रशंसा की गई, उसको वेलकम किया गया है कि इससे डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो ये आर्टिकल आप देख लेंगे। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के कुछ ईमेल्स पर। तो सबसे पहले मैं अपने इन मित्रों को धन्यवाद दे दूं, आभार व्यक्त कर दूं अपनी ओर से, जिन्होंने ऑडियो गाइडेंस के प्रति अपनी सराहना व्यक्त की है। इसमें है भिवानी से भरत कुमार और दूसरे हैं राम निवास देव जी और हैं हरप्रीत जी, हैं ये महिपाल माहिलपुर पंजाब से हैं। मित्रों इसके साथ ही 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं उनके जवाब दे दूं। वंदना है फ्रॉम तप्पाल अलीगढ़ से हैं, इन्होंने जानना चाहा है कि आईएएस के बारे में ये कुछ नहीं जानती हैं लेकिन क्या मुझे ये क्लासेस जो यहां अक्टूबर में होने वाली हैं ये ज्वाइन करनी चाहिए। वंदना जी मैं देखिए आपकी क्या स्थिति है आप जानेंगी, स्थिति का मतलब आपकी जरूरत क्या है वो आप समझ पाएंगी, लेकिन जहां तक आपने पूछा है कि आपको आईएएस के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो ये क्लासेस आपके लिए कितनी उपयोगी रहेंगी, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि यहां बेसिक्स ही बताई जाएंगी, यहां आपका सिलेबस पढ़ाया नहीं जाएगा, पूरा नहीं किया जाएगा, यहां बेसिक्स बताई जाएंगी। और मैं समझता हूं कि बेसिक्स शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी बात होती है। जब तक हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हम चाहे उसके ऊपर कितनी भी मेहनत करते रहें उतना फायदा हमें नहीं मिल पाता। तो अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं ये समझता कि ये तो सबसे आदर्शतम स्थिति है कि मुझे पता लगेगा कि पढ़ाई की मैं शुरुआत कैसे करूं। तो इस दृष्टि से तो अगर आप मेरी ओपिनियन मांगेंगे तो मैं समझता हूं कि आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल टाइम होगा कि आपको क्लास यहां के ज्वाइन करने के बाद अपनी शुरुआत करनी चाहिए, वैसे निर्णय आपको लेना है। और दोस्तों इसी में मैं बताना चाहूंगा कि हरप्रीत का मेरे पास जो एक मेल आया है उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से और फिर उन्होंने इकोनॉमिक्स को आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़नी शुरू की इंडियन इकोनॉमी पर, उन्होंने नोट्स भी ले लिए, वो पढ़ रहे हैं लेकिन उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने जानना चाहे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हरप्रीत जी देखिए मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए क्योंकि वो उतना आसान नहीं है, लेकिन बात वहीं आती है बेसिक क्लासेस की। अगर बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। तो आपको भी मैं यही जवाब दूंगा, ये नहीं कि आप क्लास में आइए, मैं ये जवाब दूंगा कि बेसिक्स क्लियर कीजिए, चाहे आप जहां से भी कीजिए, उसके लिए मेरी यही एकेडमी की ही क्लास बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। वहां के प्रोफेसर्स को ले लीजिए, टीचर्स को ले लीजिए, जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हों उनसे ले लीजिए, या जिसमें भी आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, बेसिक्स जरूर क्लियर होने चाहिए। ये एक तरह से सिविल सर्विस की बहुत प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। और ये बेसिक्स क्या होती हैं, इस क्षेत्र में क्या क्या होता है, कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने अभी अपनी शुरुआत में ही कहा था कि इसके संडे का जो ऑडियो गाइडेंस होगा वो इसी सब्जेक्ट पर होगा। इसके बाद अमित यादव का मेल है जो अपने खासकर ऑप्शनल पेपर में किस सब्जेक्ट को ले इसके बारे में इन्होंने जानना चाहा। अमित जी इसके बारे में आप ही डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, दूसरा कोई आपके बिहाफ पर निर्णय नहीं ले सकता। हां आप डिसाइड करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर हो सकते हैं अगर ये जानना चाहते हैं तो मेरी अभी एक किताब आई है आप आईएएस कैसे बनेंगे, वो किताब आप ले सकते हैं। उसमें एक सेपरेट चैप्टर ही है कि ऑप्शनल पेपर का सिलेक्शन कैसे किया जाना चाहिए, शायद उसको पढ़ने के बाद आपको मदद मिल सकेगी ऑप्शनल पेपर के चयन में। इसके बाद दोस्तों अंतिम मेल है, ये रविकांत दीक्षित का है जिसमें इन्होंने जानना चाहा है कि दोस्तों जैसा कि मैंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स क्लास में आएंगे तो 15 दिन की उनकी क्लासेज होगी, इसके बाद उनके लिए एक अलग से ऑडियो गाइडेंस होगा। तो अलग से ऑडियो गाइडेंस के बारे में जानना चाहा है इन्होंने, तो मैं सभी अपने उन स्टूडेंट्स को बता दूं जो जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है कि ये जो अभी आप ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं ये कॉमन फॉर ऑल है, ये सबके लिए है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन याद रखिए कि ये आपके लिए भी कंटिन्यू रहेगा, आपको इसे भी सुनना है। यानी कि आपके लिए अलग से जो ऑडियो गाइडेंस लॉन्च किया जा रहा है तो अब आप उसमें सुनेंगे, उसे सुनेंगे और इसको छोड़ देंगे, नॉट एट ऑल। ये तो आपको सुनना ही सुनना है, लेकिन एक ऑडियो गाइडेंस अलग से शुरू किया जाएगा जो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने क्लासेज ज्वाइन की थी। उसकी अप्रोच भी, उस ऑडियो की अप्रोच सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट तक होगी, मतलब वही स्टूडेंट उस तक पहुंच सकेंगे, उसका एक सिस्टम ऐसा होगा, दूसरे उसको नहीं सुन सकेंगे। और यदि वो सुन भी लेते हैं तो उनकी समझ में उतना नहीं आएगा, क्योंकि उसमें फिर हम बड़े अलग तरीके से उस ऑडियो गाइडेंस का सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ये तो कंटिन्यू रहेगा ही, उसमें किसी इश्यू बेस्ड या उस समय की जो जरूरत होगी उनको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेटली है कि वो जो दूसरा ऑडियो गाइडेंस होगा, घबराइए मत कि साहब इसको भी सुनना पड़ेगा उसको भी सुनना पड़ेगा, वो डेली नहीं होगा। वो हम डिसाइड करेंगे कि सप्ताह में एक दिन रखा जाए, दो दिन रखा जाए, क्या जरूरत है, लड़कों का जो ग्रुप आएगा उसको देखते हुए, सब्जेक्ट को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि कितने दिन रखा जाए, लेकिन डेफिनेटली वो डेली नहीं होगा। तो कुल करके कि वो जो ऑडियो गाइडेंस होगा जो दूसरा लॉन्च किया जाएगा वो डेफिनेटली केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा जो क्लासेस अटेंड करेंगे। दोस्तों तो अब इसी के साथ ही मैं आपको दो क्वेश्चंस मुझे देने हैं दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी में भूल जाता हूं कि मैंने कहा था कि आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा और इन क्वेश्चंस के आधार पर आप जज कीजिए कि आपका अखबार पढ़ने का तरीका, न्यूज सुनने का तरीका सही है या नहीं है। पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स कोष का नाम क्या है, ब्रिक्स कोष का नाम क्या है और उसमें कुल शुरुआत कितने धनराशि से की गई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि केंद्र सरकार ने एक रोजगार योजना लॉन्च की है, उस रोजगार योजना का नाम क्या है, किसके नाम पर वो रोजगार योजना का नामकरण किया गया है। तो ये दो क्वेश्चन है। इसी के साथ ही मैं आज के अब इस ऑडियो गाइडेंस को यहीं विराम देता हूं, समाप्त करता हूं और साथ ही साथ आप लोगों को नमस्कार भी करता हूं। नमस्कार।